भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय 69 श्लोक या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने हरे कृष्ण याद हो गए या जो निशा रात्रि है सर्व समस्त भूतानां जीवों की तस्याम उसमें जागृति जागता रहता है संयमी आत्मसंयमी व्यक्ति जस्याम जिसमें जागृति जागते हैं भूतानि सभी प्राणी सा वो निशा निशा का मतलब क्या है रात्रि वेरी गुड पश्यतो आत्मनिरीक्षण करने वाले मुने मुनि के लिए अर्थात जो सब जीवों के लिए रात्रि है जो सब जीवों के लिए रात्रि है वो आत्मसंयमी के लिए जागने का समय है और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वो आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। आप भी बोलिए मेरे साथ जो सब जीवों के लिए रात्रि है वो आत्मसंयमी के जागने का समय है और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वो आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। तो ये श्लोक का अर्थ ये कठिन कठिन नहीं है। यानीशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी जस्यां जागृति भूतानि सानिशा पश्यतु। यानीशा सर्वभूतानां, जो सर्वभूतानां मतलब समस्त प्राणी के लिए, आम आदमी के लिए, जो रात्रि है या निशा है, रात्रि है, ओ तस्सां जागृति संयमी, जो संयमी, संयमी का मतलब क्या है, जो अपने आप को जो संयम अपने को संगत करके रखते हैं। ये भौतिक जगत में क्या होता है, हम सब इंद्रियां सुख, इंद्रिय सुख भोग करने का इच्छा करते हैं। हर व्यक्ति इस भौतिक जगत में ये शरीर के माध्यम, इंद्रिय के द्वारा ये भौतिक जगत को भोग करने का प्रयास करता है ना। परंतु जिसको असल, जिसको ये ज्ञान है कि ये नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो करने से अंत में कठिनाई और कष्ट मिलेगा। वैसे जिस व्यक्ति को ज्ञान नहीं है, जो अज्ञान है, वो सोचते हैं कि ये भौतिक जगत को भोग करना ही जीवन का उद्देश्य है ना। परंतु ये भौतिक जगत क्या भोग करने का जगह है, क्योंकि ये भौतिक जगत में सुख प्राप्ति बहुत ही कठिन है। थोड़ा बहुत मिलता है परंतु सुख के पश्चात क्या आता है, दुख आता है। असल में ये भौतिक जगत दुख से ही भरा हुआ है। यहां चार तरीका का दुख या कष्ट प्राप्ति का प्रबंध रहता है, वो क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जन्म कष्टदायक है, मृत्यु वो भी बहुत कष्ट के विषय है। जन्म मृत्यु जरा, जरा मतलब, जरा मतलब बुढ़ापा, वृद्धावस्था, और व्याधि रोग। तो ये चार जो हैं, इस जगत में, भौतिक जगत में हम लोगों का जन्म हुआ, हम भूल गए हैं कैसे जन्म का, जन्म के समय में कितना कष्ट होता है, हम भूल गए हैं। परंतु ये हमको बहुत अच्छा तरह याद रखना चाहिए कि मृत्यु का समय बहुत कष्ट होगा, और जब शरीर में वृद्धावस्था आएगा तब भी बहुत कष्ट होगा, और जब कोई किसी प्रकार का बीमारी या रोग होता है, व्याधि, उससे भी कष्ट होता है। और त्रिताप, इस भौतिक जगत में तीन प्रकार का कष्ट हमको हर समय मिलता रहता है। वो त्रिताप शोक कैसा है, अपना शरीर और मन के कारण जो कष्ट होता है, आधी आत्मिक क्लेश, आधी भौतिक क्लेश या दूसरे जीवों ने जो हमें कष्ट देता है, वो है आधी भौतिक क्लेश और आधी दैविक क्लेश, प्रकृति के नियम के कारण, दैव के कारण जो हमें कष्ट मिलता है। एक प्रकार कष्ट है अपना शरीर और अपना मन के कारण होता है, शरीर में कुछ रोग व्याधि आया, उससे क्या होगा, जब कैंसर होता है या कोई खराब रोग होता है तो क्या कष्ट मिलता है? तो ये तो एक है अपना शरीर के कारण कष्ट, दूसरा है मन के कारण जो कष्ट, मन में बहुत कुछ किसी कारण से मन में बहुत ही कष्ट होता है, कि बहुत सारे कारण। और ये है आध्यात्मिक क्लेश, अपना शरीर और अपना मन से जो कष्ट मिलता है। और आधि भौतिक, दूसरे कोई व्यक्ति या कोई प्राणी जब हमको कष्ट देता है उसको आधि भौतिक क्लेश कहा गया है। जैसे बहुत सुंदर जीवन बिता रहा है, सब कुछ बहुत सुखी व्यक्ति है ऐसे देखने में, परंतु एक दिन रात को डाकू आया, घर से सब कुछ चुरा के ले गया और बहुत सारे रिश्तेदार या परिवार को मार के हत्या करके चला गया, तो क्या होगा? कष्ट होगा। और आधी दैविक क्लेश, जो प्रकृति के नियम के अनुसार, प्रकृति के कारण जिसको देवताओं ने संभालते हैं उसकी कारण जो क्लेश होता है, जैसे कुछ दिन पहले हुआ था सुनामी, सुनामी से क्या हुआ, कितने आदमी, लाखों आदमी का देहांत हो गया। वैसे अचानक एक पानी का तूफान आया, पानी का क्या बोलते हैं, ठीक है, एक पानी के लहर, बहुत बड़ा लहर, 30 फीट 40 फीट ऊंचा, वो सब यूरोप से जगह जगह से सब गए थे, थाईलैंड में जहाँ ये बहुत सुंदर बीच है, बीच का हिंदी क्या है, समुद्र के किनारा जहाँ रेती रहता है, तो वहाँ मजान लूटने के लिए वो लोग गया था, और था भी छुट्टी का समय, क्रिसमस, यूरोप से अमेरिका से जगह जगह से वो लोग गए थे वहाँ मजान लूटने के लिए। अचानक एक वो समुद्र के किनारे लेटे हुए थे, इंग्लैंड, यूरोप में, इंग्लैंड में तो बहुत उस समय बहुत ठंडा होता है, शीत के समय बहुत ठंडा होता है, और थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, उस जगह में समुद्र के किनारे, वहाँ साल भर सूरज का किरण रहता है और वातावरण भी बहुत सुंदर रहता है। वो सब गया था मजा लूटने के लिए, परंतु क्या हो गया, देखिए कोई बड़ी बात नहीं है, 30 फुट एक लहर आया बस, तो कोई क्या ये सोचा था कि ऐसे होगा, परंतु कोई क्या ये चाहा कि ऐसा हो, नहीं, फिर हुआ। क्यों? क्यों? ये है प्रकृति का, इस जगत का नियम, आधी दैविक, दैव के कारण ऐसा हो जाता। तो ये जगत दुखालय है, दुख प्राप्ति के स्थान है। तो ये जब हम समझ लेते हैं तब हम क्या, हमें क्या करना चाहिए? जब हमको पता चला, जब हमको, हम समझ गए हैं कि यहां रहने से हमको कष्ट मिलेगा, तो हमको क्या करना चाहिए? यहां बहुत सारे सुख प्राप्त, सुख मिलने का आयोजन करना चाहिए या कष्ट का निवारण करने का कोशिश करना चाहिए? कैसे असल से, असल रूप से एक निवारण कैसे होगा, वो उसका प्रयास करना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जब आम आदमी जो जिसको ज्ञान नहीं है, वो जो कुछ करते हैं, जो ज्ञानी है, जो संयमी है, जिसको पता चल गया है कि ये भौतिक जगत एक कष्ट प्राप्ति के स्थान है, उन्होंने क्या करते हैं, उसको पूर्ण तरह निवारण करने का चेष्टा करते हैं, इस स्थिति का सुधारने का प्रयास करते हैं। तो इसका हां जानिशा सर्वभूतानाम, रात में आदमी, जो आदमी आम आदमी के लिए जो रात्रि है, संयमी के लिए वो दिन है, उस समय वो जागते हैं। और जब आम आदमी जागते हैं उस समय उसको संयमी जो है उसको रात्रि समझते हैं। मतलब आम आदमी जो कुछ करते हैं, जो आत्मशा जय श्री श्री राधा मदन मोहन, साधारण आदमी जो करता है, जो चाहता है, जो संयमी है, वो संयमी का मतलब जिसको पता है कि ये इस भौतिक जगत का असल स्थिति कैसा है, तो उन्होंने क्या करते हैं, उससे अपना उस स्थिति को सुधारने का कोशिश करते हैं। इसके इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, बुद्धिमान मनुष्यों के दोष, बुद्धिमान मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं। एक श्रेणी के मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्य करने में निपुण होते हैं और दूसरी श्रेणी के मनुष्य आत्मनिरीक्षक हैं, जो आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए जागते हैं। विचारवान पुरुषों या आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है। भौतिकतावादी व्यक्ति ऐसी रात्रि में अनभिज्ञता के कारण आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए रहते हैं। आत्मनिरीक्षक मुनि भौतिकतावादी पुरुषों की रात्रि में जागे रहते हैं। मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलन की क्रमिक उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव होता है, किंतु भौतिकतावादी कार्य में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहकर अनेक प्रकार के इंद्रिय सुखों का सपना देखता है और उसी सुप्तावस्था में कभी सुख तो कभी दुख का अनुभव करता है। आत्मनिरीक्षक मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख के प्रति अन्न मनस्क रहता है, वो भौतिक घातों से अविचलित रहकर आत्म साक्षात्कार के कार्यों में लगा रहता है। अच्छा, तो इसका असल विचार कैसे होता है, हमारा जो चेतना है वो चेतना दो कोटि में रहता है ना, एक तो है शरीर का चेतना और एक आध्यात्मिक चेतना। ये शरीर का चेतना जो है, वो शरीर का चेतना हमें ये भौतिक जगत के प्रति आकृष्ट होने का कारण बन जाता है। हम जब ये शरीर को अपना स्वरूप समझते हैं, तब हम समझते हैं कि ये शरीर का सुख हमारा जीवन का उद्देश्य है, शरीर का सुख प्राप्ति हमारा जीवन का उद्देश्य है। परंतु जो आत्मस्वरूप में जो स्थित है, जिसको सही रूप से मालूम हो गए हैं, जो सही रूप से समझ गए हैं कि ये शरीर उनका स्वरूप नहीं है, असल में उनका आत्मा ही उनका स्वरूप है, तब वो क्या करते हैं, ये शरीर के सुख प्राप्ति के प्रयास न करके आत्मा स्वरूप में स्थित होने का प्रयत्न करते हैं। तो उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है, जो ये शरीर के द्वारा सुख प्राप्ति का कोई चेष्टा नहीं करके अपना आत्मा स्वरूप में स्थित होने का प्रयत्न करते हैं। उनको क्या कहा जाता है, इस श्लोक में उनको क्या कहा गया है, संयमी। संयमी, संयम का मतलब है उसको नहीं करने देना। हमारा चेतना, हमारे इंद्रिय के माध्यम, शरीर के माध्यम इंद्रिय सुख प्राप्ति के प्रयास और का वासना करता है, कर रहा है, परंतु जो ज्ञानी है वो क्या करेंगे, वो बोलेंगे नहीं, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। जैसे आपका घर में आज शायद आप ये अखबार में देखा, रात को 8 बजे एक बहुत अच्छा मूवी टीवी में दिखाया जाएगा, तो मन कह रहा है कि चलो भाई ये आज मंदिर में नहीं जाएंगे, आज घर में रहकर टीवी देखेंगे, और परंतु आपका जो आध्यात्मिक विचार, उसके कारण आप सोचा नहीं, ये नहीं करना चाहिए, वो टीवी देख के फायदा क्या हो, उसमें क्या है, वो तो केवल हमको ये भौतिक जगत के प्रति ही मेरा आकर्षण बढ़ाएगा। परंतु अगर हम मंदिर में जाएंगे, भगवान को दर्शन करेंगे, आरती में भगवान को महिमा कीर्तन करेंगे और भक्तों को संग करेंगे, भगवान के वाण कथा सुनेंगे, भगवत गीता पाठ करेंगे, तो ये जब सोचते हैं तो ये जो आपको मन जो चाहता था, उससे जो अपना मन को जो संयत किया है, उसे संयम कहा जाता है। तो संयमी कौन है, संयमी तपस्वी, ये शब्द एक ही अर्थवाचक है। तपस्वी, तपस्या का अर्थ क्या है, आध्यात्मिक साधन के लिए जो कठिनाई हम स्वीकार करते हैं, और ये कठिनाई स्वीकार करने का मतलब क्या है, हमारा जो मन का स्वाभाविक जो चाहना है उसको संभालना, तो उसको संयमी कहा जाता है। तो जो संयमी है, जो आध्यात्मिक उन्नति साधन करना चाहते हैं, वो क्या करते हैं, वो व्यक्ति क्या करते हैं, सारे आदमी जो कुछ कर रहा है वो नहीं करता। साधारण व्यक्ति जो भौतिकतावादी व्यक्तियों ने जो कुछ करता है, मतलब भौतिक जगत को भोग करने का जो चेष्टा करते हैं, वो नहीं करते, वो केवल अपना आध्यात्मिक उन्नति के ही प्रयास या प्रयत्न करते हैं। और जब हर आदमी सो जाता है, हर आदमी जागते हैं, सो जाता है, मतलब जब जो कार्य दूसरे आदमी नहीं करता है, जिस समय सब सो जाते हैं, उस समय ये जागृत रहकर अपना आध्यात्मिक उन्नति साधन करते हैं, और जब दूसरे आदमी जागते हैं तो वो सो जाते हैं, सो जाते नहीं, वो सोचते हैं कि ये तो रात्रि है, नहीं करना चाहिए, इस समय ये कार्य में युक्त होना नहीं चाहिए। तो ये जो साधारण चिंतन है, ये या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति जागृति संयमी जस्सां जागृति। तो तुम क्या मुनि हो, संयमी हो? हाँ हाँ है ना, ठीक है। मुनि का मतलब क्या है? असल मुनि कौन है? जो अपना आध्यात्मिक उन्नति आध्यात्मिक प्रगति के प्रयास करते। तो दो कोटि का व्यक्ति हम विचार किया अभी, एक जो अपना शरीर को अपना स्वरूप समझता है उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? भौतिक तबादी। जो ये अंग्रेजी में इसको क्या कहा जाता है? मेटीरियलिस्टिक, मेटीरियलिस्टिक पर्सन, जिसका सारे उद्देश्य होता है कैसे हम इस भौतिक जगत में भौतिक जगत को भोग करेंगे। और जो आध्यात्मवादी है, जो अपना आत्मा को अपना स्वरूप समझ गए, वो क्या करते हैं? ये आत्मा को भगवान को अंश के रूप में देखकर भगवान के सेवा में युक्त हो जाते हैं। तो जो भगवान को सेवा में युक्त होते हैं उसको क्या कहा जाता है? भक्त। और ऐसे हम देखते भी हैं बहुत सारे जो भौतिकतावादी व्यक्ति जो हैं वो रात को जागते हैं, दिन को सोते हैं। अमेरिका में कोई जगह है, शहर है, जैसे लास वेगस। लास वेगस एक जगह है जहां वो असल में वो जगह है एक रेगिस्तान के बीच, जहां कुछ नहीं है, परंतु बहुत सारे ये करके अरेंजमेंट करके वहां पानी ले गए हैं रेगिस्तान के बीच, और वहां पर एक बहुत सुंदर शहर बना। और वहां क्या होता है वो शहर में? सारा तरीका का बुरा काम होता है, और आदमी जगह जगह से पृथ्वी के कोने कोने से आते हैं वहां। क्या? एक तो है जुआ खेलना, वो जगह जो है वो कैसीनो, सारे कैसीनो से भरा हुआ है, नाइट और नाइट क्लब्स। तो वहां सब जाके, और वहां का वातावरण भी जैसे है, आप दिन में भी वहां जाएंगे तो ऐसा मालूम होगा कि जगह रात्रि है, क्योंकि वो सारे जगह एकदम वहां सूरज का किरण वहां घुसने नहीं देते। इसका कारण ये है कि किसी भी समय में आप यहां आएंगे तो आपको मालूम होगा कि ये रात है, क्योंकि जो जो ये जो पाप काम जो है वो मनुष्य दिन के वक्त नहीं कर सकते। पाप काम करने के समय कौन है? रात्रि के समय। तो इसीलिए उन्होंने वैसा एक वातावरण सृष्टि किया, वहां सूरज की किरण नहीं घुसने देता है, और वहां पर दिन के समय भी ऐसे बिजली का ये है, बत्ती जल रहा है। तो आप देखिए मनुष्य, और बड़े बड़े शहर में जब हम जाते हैं तो वहां क्या देखते हैं? सारे काम बहुत रात को ही वहां बहुत सारे ये हो रहे हैं, दिन के वक्त ये जगह का कहीं एक दो चार आदमी को दिखाई देता है, परंतु रात को वहां जाएंगे देखेंगे एकदम रास्ता भरा हुआ है। और ऐसे बहुत सारे आदमी हैं जो रात को जागते हैं दिन को सोते हैं। मैं देखा बहुत ऐसे बहुत सारे आदमी को जो दिन को सोते हैं, और रात को क्यों जागते हैं? क्योंकि वो शराब पीते हैं, शराब पीते हैं, और शराब का दुकान भी कोई दुकान 10 बजे से बंद हो जाता है, तो वो एक दुकान छोड़कर दूसरी शराब के पीने के लिए जाता है जहां 12 बजे तक खुला रहता है। तो और कोई जगह है जो 12 बजे बंद हो जाता है, और कोई जगह है तो 2 बजे तक खुला रहता है। ऐसे ये 4-5 बजे तक जगह जगह में जाकर पीते रहते हैं और बाद में घर में आकर सो जाते हैं। ये कौन से जीवन है? देखिए, वो सोचते हैं कि उसके लिए ये उसका भावना ऐसा है कि ये है जिंदगी, परंतु असल में ये है कठिनाई। तो जो आध्यात्म जिसको ज्ञान है, जो ज्ञानवान है, जिसको यहां मुनि के रूप में संबोधन किया गया है, आत्म साक्षात्कार करने वाला जो व्यक्ति जो है, उसको पता है ऐसा नहीं जीवन हम ये मनुष्य जीवन जो है ये बहुत ही दुर्लभ है। इस मनुष्य जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। और इसके इस जीवन का उद्देश्य क्या है? ये सदुपयोग कैसे होता है? सदुपयोग तभी होता है जब हम भगवान को भगवान के साथ हमारा संपर्क जोड़ देते हैं। जब हम भगवान कौन है, भगवान को पहचान कर भगवान के बारे में पूर्ण ज्ञान प्राप्त होकर जब भगवान के साथ हमारा संपर्क जोड़ने का प्रयत्न करते हैं, तभी हमारा ये जीवन सार्थक होता है, नहीं तो ये जीवन व्यर्थ हो जाता है। मृत्यु के समय हमें ये विचार आएगा हमारा मन में, ये जीवन मिला था परंतु मैं क्या किया, क्या करना चाहिए इस जीवन में भगवान के साथ हमारा संपर्क जोड़ना। और भगवान के साथ संपर्क जोड़ने से फायदा क्या होता है? भगवान के साथ संपर्क जोड़ने से हमारा जीवन के जितने सारे समस्याएं हैं उसको समाधान हो जाता है। भगवान के साथ संपर्क जोड़ने से हमारा मन में और कोई चिंता नहीं रहता है, हम पूर्ण शांति प्राप्त होते हैं और हम सबसे दुर्लभ जो वस्तु है आनंद, वो आनंद प्राप्त होते हैं। इस जगत में हर व्यक्ति हर प्राणी जो कुछ कर रहा है वो केवल आनंद प्राप्ति के लिए ही कर रहा है। और वो आनंद प्राप्ति कैसे होता है? शराब पीने से होता है, बुरा काम करने से होता है, जुआ खेलने से होता है। आनंद प्राप्ति तभी होता है जब हम भगवान के साथ हमारा प्यार का संपर्क जोड़ लेते हैं। तो भौतिकवादी का जीवन और आध्यात्मिक आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति के जीवन एकदम विपरीत होता है। और उसके कारण इस श्लोक में कहा गया है, ज्ञानीशा सर्वभूतानां तस्सां लाभः। वेरी गुड, थैंक यू। हरे कृष्ण। प्रश्न है किसी को?
हाँ, दारू पीने का जो दृश्य दिखाया गया,
अच्छा,
उसका मतलब क्या है?
दारू पीने का
उसमें होटल दिया है।
अच्छा, जय श्री राधा मदन मोहन की। हाँ, ये भगवद गीता, ये श्रीमद् भागवत का 5वां अध्याय में, श्रीमद् 5वें स्कंध में इसका वर्णन हुआ है कि पाप काम करने से उसका फल कैसा होता है। जैसे शराब पीना, नशा करना एक पाप है, तो ये पाप का फल क्या होगा? जैसे मृत्यु के बाद जमराज जमालय में नरक में ये ऐसी सजा मिली। मतलब उसको मुंह में क्या डाला जा रहा है, हॉट मोल्टन लेड, शीशा पिंगला हुआ शीशा, वो जो गर्म हो कितना गर्म है उसको तब खिलाया जाएगा। तो ऐसे पाप काम का फल ऐसा हो, जैसे यहां बताए गए ऐसे अनेक जीव हैं जो दुष्टों के दंड देते हैं, किंतु इनमें जम प्रमुख हैं। जम पृथ्वी लोक के निकटवर्ती लोक में रहते हैं, मृत्यु के बाद पापी लोगों का यहां ले जाया जाता है और जम उन्हें तरह तरह का दंड देने की व्यवस्था करते हैं। समझे ना? तो चार प्रकार के पाप काम जो है ये है, एक तो शराब, ये शराब पीना, और एनीवे यू कैन, आप देख सकते हैं ये पाप काम कैसे होता है। उसके कारण पाप नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, भगवान को सेवा करना चाहिए, और भगवान को सेवा करने से कोई पाप नहीं रहता है। भगवान को जो सेवा करता है वो कितना भी पापी हो उसको सारे पाप का पाप से छुटकारा मिल जाता है। जैसे भगवान कह रहे हैं अपिचेदसी पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतमा सर्वं ज्ञान प्लवेनैव ब्रिजिनं संतरिष्यसि। भगवान कह रहे हैं यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ हो। तो जो भगवान का भक्त होते हैं, भक्त बन जाते हैं, वो कितना भी पापी हो वो सारे पापों से उनका छुटकारा हो जाता है, मुक्ति हो जाती है। और भगवद गीता में भगवान और भी बताए हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं देहि अहं त्वां सर्व पापेभ्यो। सर्व पापेभ्यो का मतलब है समस्त पाप से मुक्त कर दूंगा, सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मुक्त कर दूंगा मां शुचि। सोचो ठीक है। हरे कृष्ण। देखिए पाप थोड़ा बहुत तो सबको ही हो जाता है, अज्ञान के कारण, अज्ञान के वश हो जाते हैं। जैसे आजकल तो हर बहुत सारे आदमी शराब पीते हैं, नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं, बुरा काम करते हो जाता है, क्योंकि यहाँ ये जो वातावरण जो है आज ये बहुत खराब बन गया है, और ड्यू टू बैड एसोसिएशन, बैड एसोसिएशन को क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, बुरी संगति कारण हो जाता है। तो क्या होगा, नरक में दंड मिलेगा, वैसे मिलता था, परंतु अगर भगवान को भक्त बन के जाते हैं। तुम्हें तो अच्छा अच्छा तो थोड़ा बहुत पाप तो सभी का हो जाता है, अचानक भी हो जाता है। जैसे हम जो बाजार में जाते हैं, कोई कहीं कुछ खरीदने को जा रहे हैं, तो कितने प्राणी को हत्या हो जाता है हर पग में। खाना पका रहे हैं आग में, कितने प्राणी का हत्या हो रहा है। श्वास लेते हैं तो भी कितना प्राणी का हत्या हो। तो ये सब पाप है, पाप हो रहा है। तो इस पाप से छुटकारा, मुक्ति कैसे होगा, क्या करना चाहिए? भगवान को शरण लेना। माम एकम शरणं व्रज। अगर हम भगवान को शरण ले लेते हैं तो सारे पापों से छुटकारा। तो बताइए हमें क्या करना चाहिए? भगवान को शरण लेना चाहिए। हाँ, भगवान को शरण लेने से कितने आसानी से सारे समस्या का समाधान हो जाता है। और इसके इससे इसका फल क्या होता है भगवान का शरण लेने का? हमें हमारा जीवन इतना सुंदर बन जाता है, हमें इतना आनंद मिलता है, और कोई भाव चिंतन नहीं रहता है। तो ये है भगवान के सेवा, भगवान को भक्ति करने का फल। हरे कृष्ण। अरे हम सब भगवान का कीर्तन, भगवान का महिमा कीर्तन करते हैं थोड़ा।
जय श्री राधा मदन मोहन की। जय।